اترے بھائی خدا کی کیا شان ہے, دیکھا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا. اس آدمی کا کیسا یہ تھا کہ وہ تلاش میں تھا کہیں کو مہاپرش ملے مجھے پربھو سے ملایا, زبردست خواہش تھی مگر بہت تلاش کے بعد نہیں ملا. آپ کو پتا ہے بھائی اندھا سجا آنکھوں والے کو کیسے پکڑ سکتا, آنکھوں والا ہی کرپا کرے تو جا پکڑے تو پکڑے. نہ ملا اس نے کہا اچھا بھائی ایسی جگہ بیٹھیں گے کہ جہاں کوئی بھی نہ ملے, دیکھیں گے اگر جذبہ ہے الف الفت میں جذب ہے جذبہ ہے تو کھچ کر آئی جائیں ضرور پہنچیں گے. اس کے اندر میں جا بیٹھا نہ کوئی آئے نہ جائے, وہاں دیکھا پتہ لگا کیوں بھائی کیسے آئے, کہ یہ بات ہے خیر قاعدے کی بات ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی کا نیم اچل ہے, پربھو نے سامان بنانا ہے کیا کسی ملے کو ملا دینا. جس کے اندر جذبہ ہے نا یہ سب مہاتما یہ کہتے ہیں, قرآن شریف میں آتا ہے خدا کہتا ہے بندہ جو منہ سے مانگے گا ملے گا. گرو مانی کہتی ہے پتا کرپال آ گیا یقینی بارک مکھ مانگے تو دینا, جو بچہ منہ سے مانگے گا میں دوں گا. سب مہاتما نے یہی کہا ناک اینڈ اٹ شیل بی اوپنڈ انٹو یو, دروازہ کھٹکھٹا اور کھولا جائے گا. سوال کھٹکھٹانے کا ہے, در پر بیٹھنے کا. ہمارے حضور فرماتے تھے کہ تم کسی امیر کے دروازے پر بیٹھ جاؤ, وہ دیکھتا ہے کہ میرے دروازے پر کوئی بیٹھا, آج نہیں کل پوچھے گا, کل نہیں پرسوں پوچھے گا. کیا تم پربھو کے دروازے پر بیٹھے ہو تو اس کو فکر نہیں کہ میرا بندہ مجھے مانگ رہا. بات یہ کہ ہمارے اندر اس مالک کے ملنے کی تڑپ نہیں. اس کو پیدا کرو جس سامان سے بن سکتی ہے پیدا کرو بھائی, جب یہ بنے گی تو سمجھو پربھو آ جائے گا. آنے کا پیش ہے بھائی. ایک بچہ تھا کمرے میں کھڑا تھا, گر گیا, اٹھنا چاہتا تھا, دروازے کو پکڑا ہاتھ پھسل گیا گر گیا, کرسی کو پکڑا کرسی الٹ گئی پھر منہ کے بال گر گیا, کوئی کپڑا لٹک رہا تھا اس کو پکڑ کر اٹھنا چاہا کپڑا گر گیا وہ بھی ساتھ پھر گر گیا, ہار کر نکلا ہائے ماں. ماتا رسوئی میں تھی تھا, آواز سنی درد بھری بھاگ دوڑی, جا کر بچے کو اٹھایا چھاتی سے لگایا واپس آئی تو دو سب ابھر کر گر گیا تھا. بچہ کہنے لگا ماتا میں تجھے بڑا پیارا ہوں. کہتے ہاں بچہ تو بڑا پیارا, تو نے دودھ کی پرواہ نہیں کی. کہلے ہاں بچہ تو بہت پیارا. ختم ہوگی بات. دو چار دن کے بعد بچے کو چترائی سوجی, بیٹھا ہے گرا نہیں, کہتا ہائے ماں ہائے ماں ہائے ماں کرتا چلا جاتا. آدھا گھنٹہ کرتا رہا ماتا نہ آئی. سوچا شاید ماتا نے بہت قیمتی چیز چڑھائی ہوتی. آیا ریتے ریتے ماتا کے پاس آ کھڑا ہوا, اس کا کندھا پکڑ کر کھڑا ہو کر پوچھا ماتا چڑھایا کیا ہے؟ کہتے بچہ دال چڑھائی ہے. کہتے نہیں ماتا یہ نہیں ہو سکتا. بتلا بتائی تو دال ہی تھی. کہتے ماتا یہ کیا بات ہے؟ اس دن میں نے ایک بار ہائے ماں کہا تو بھاگی بھاگی آئی, دودھ کی پرواہ نہ کی, آج میں آدھے گھنٹے سے ہائے ماں کر رہا ہوں تم نہیں آئے. چلے بچہ آج تیری آواز میں وہ درد نہیں بھائی, مانگو اور ملے گا, کھٹکھٹاؤ اور دروازہ کھولا جائے گا, تڑپ ہونی چاہیے, اگر تڑپ ہے تو وہ آتا. یہی پیش ہے. تو گرو رام داس جی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے دل میں اس پربھو کے پانے کی تڑپ بن گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گرو مل گیا. گرو کا آنا ڈیمانڈ اور سپلائی کے نیم کے انوسار ہے. وہ مل گئے. جب مل گئے اس صورت میں اس کی جھلک نظر آئی. مجھے سم کون ہوتا ہے؟ گرو کون ہوتا؟ گرو ایک انسانی پول ہے جس پر پربھو بولتا. گفت ہے اور گفت ہے اللہ بود گرچہ حلقوم عبداللہ بود, ان کا کہا ہوا پربھو کا کہا ہوا ہوتا ہے. ظاہر شکل میں وہ انسانی گلے سے آواز نکلتی معلوم ہوتی. گورو جو اندھیرے میں پرکاش کرے, جیوتی کو جگمگا دے. اب اندھیرا ہے پھر اندھیرے کو دور کر دے. جے سو چندا اگوے سورج چڑھے ہزار, ایتے چانن سونیا گر بن گھور ہندار. جس آنکھ میں کفت بینائی ہی نہیں. ہزار سورج چڑھ جائیں, ہزار چندرما چڑھ جائیں, اس کے لیے نہیں چڑھے. سب مہاپرش کہتے ہیں کہ پرماتما جیوتی سوروپ ہے, گٹ گٹ میں پرماتما بس رہا. ارے بھائی وہ آنکھ بنی نہیں جس سے وہ نظر آتا, وہ چمڑے کی آنکھ نہیں. نانک سے اکھیاں بین دن دسنو مہاپرش. کہتے گرو مل گئے, نتیجہ تڑپ کا تھا. پھر اس نے کہا, یاد ہو حضرت جنید نے اس کو کہا, بھائی اس کے بعد اگر پھر تجھے کبھی ضرورت ہو تو میں فلانی جگہ رہتا ہوں. کیا لگا آگے جیسے تم کھینچ کر آئے تھے اب بھی آ جاؤ. اگر الفت میں جذبہ ہے کشش کا تو پھر بھی تم آ جاؤ. سنسیریٹی چاہیے, تڑپ چاہیے, آگ جلنی چاہیے, آکسیجن مدد کو آئے گی, ضرور آئے گی, اوشیا آئے گی. یہ قانون قدرت. وہ جن کے انتر پربھو پرگٹ ہے وہ بھی مارے مارے پھرتے ہیں, معاف کرنا, کبھی یہاں سے خریدتے ہیں, کبھی وہاں سے پکڑتے ہیں, کبھی کہاں سے پکڑتے ہیں, کبھی باہر سے جا ملتے ہیں, کبھی انتر میں جا پکڑتے ہیں. یہ خاص تو فرما رہے ہیں گرو رام داس جی صاحب کہ میرے انتر میں پربھو کے ملنے کی پربل اچھا. گرو مل گئے, اب ان کا ایک ایک بچن میرے سینے میں کاٹ کرتا, جس چیز کا پانا ہو وہ سامنے نظر آ جائے دینے والا. کیونکہ گرو کے ملنے سے کئی باتیں ملتی ہیں, ایک ہی نہیں, انتر جوڑنا تو ایک علیحدہ بات رہی نا. باہر بھی ٹھنڈک ملتی ہے, اس منڈل میں ایک شانتی ہے, ایک چارجنگ ہے. اس کے لفظوں میں وہ حالت جو اس کے ہردے کی ہو رہی ہے اس سے رنگے ہوئے چلے آتے ہیں, دوسروں کو ویسے ہی رنگ دے جاتے. آؤٹ آف دی ابنڈنس آف ہارٹ اے مین سپیکس, جو کچھ انتر میں بس رہی حالت ہے اس سے وہ رنگے ہوئے بچن چلے آتے ہیں. پیار میں ہردہ ہو, گالی بھی کسی کو نکالو تو وہ گالی بھی میٹھی لگتی ہے. کتنی میٹھی زبان سے کہو دل میں یہ خیال ہو تمہارے سے عرشہ رکھتا ہے, میٹھی کہو وہی کٹاکش معلوم ہوتا. تو کہتے گرو مل گئے, اب ان کے بچن میرے ہردے میں کاٹ کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, حقیقت افشا کر رہے ہیں.
انتر پیاس اٹھی رب کیری, سن گر بچن من پیرل جئیا, من کی برتھا من ہی جانے اور کیا جانے کو پیڑ پرئی.
کہتے ہمارے ہردے کی حالت کو آپ کون جان سکتا, وہی جانے جس کو ایسے ہی تیر لگا. ہر پریم لگو ہر تیر, میرے من پریم لگو ہر تیر, قائل کی گت قائل جانے, اور کسی کو کیا کہ. جس کے ہردے میں ایک انیالا تیر لگ جائے وہ نکلتا نہیں, کانٹا چبھ جائے اگر بیچ ہی میں ٹوٹ جائے پھر وہ درد پیدا کرے گا. دن دن یہ تڑپ بڑھتی ہے, یہ تڑپ ایک برکت کے دینے والی. ایسے پرش تھے جس کے اندر یہ حالت ہو وہ جینا بھی, وہ نہ جی سکیے نہ مر رہی ہے. یہ بولے کیا کہتے, ایسی حالت ہے نہ جینے, جینا ہی ہے نہ ہی مرنا ہے, دونوں حالت ایک عجیب حالت بنتی ہے, مگر اس میں بھی ایک رس ہے یاد رکھو. ایسے پرشوں سے جب ملاپ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے, بھائی تم اتنی بے چینی بے حالی میں ہو, چلو یہ حالت تم سے ہٹا لی جائے, کہنا یہ نہ کرنا کیونکہ اس میں بھی ایک لطف ہے. جو مزہ انتظار یار میں دیکھا نوسلے یار میں دیکھا, اس میں بھی ایک لطف ہے, ایک رس ہے, ایک مستی ہے, ایک انتظار ہے, امید ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں کیا بنا ہمارا, فرماتے ہیں من کی برتھا من ہی جانے اور کے جانے پیر پڑے. کسی کو دوسرے کو کیا پتا یہ کس حالت میں گزر رہا. میں چھوٹا تھا, 12 برس کی عمر تھا, 1912 کا ذکر ہے, 14 میں میری ٹرانسفر پشاور میں ہوئی, یہی لگن تھی بڑی زبردست. تو جب واپس گیا تو بے اختیار یہ تھا کہ کام کرتے ہوئے آنسو بہتے تھے, کاغذ دفتر کے خراب ہو جاتے تھے. گانا آنا ماتا نے کہنا کہ معلوم ہوتا تیرا فان سے تبدیل ہو کر آنے کو جی نہیں کرتا تھا, اس لیے تیرے آنسو بہتے. میں کہا ماتا ایسے ہی ہو, کیا کہے آدمی जो राज का वाकिफ ना उसको क्या कहे। तो ये एक पेश खेमा है सब का, जिसके हृदय की हालत ऐसी नहीं बनी, याद रखो प्रभु नहीं, उसके आने का भी वक्त नहीं। जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पियो मिले तब कौन दोहा। हम दुनिया के लिए रोते नजर आते हैं, सिर पटकते नजर आते हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु के लिए आंसू बहाते। सवाल यदि की कैफियत ये नहीं होगी, प्रभु अभी हनोज दिली दूर कहते मेरे दिल की अवस्था को कौन दे जान सकता, जो इसी हालत में गुजर रहा हो या कभी गुजरा हो। कई बार रात को किताबें पढ़नी, सारी रात पढ़ते रहना, शायद यहीं से कुछ निकला प्रभु के पाने का समय। सब कुछ होना सुबह किताब, एक किताब रोज खत्म करता था मेरा, खाए 3 बजे 4 बजे 5 बजे फिर लेता नो वे आउट, कुछ नहीं। हालात बड़े अच्छे थे, बड़े समझदार, ऐसा होता है ऐसा होता, भाई कैसे होता है सवाल ये। तो ये जिसके हृदय में हालत गुजरी वही जानता कि ये अवस्था क्या, दूसरों को क्या पता। गुरु रामदास के दूसरों को क्या पता है भाई, घायल की जात घायल जात, और बेचारों को क्या पता गम किस हालत में गुजर रहे हैं। दे
मन की बिरथा मन ही जाने, और क्या जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मो मन लैया, राम गुर मोहन मो मन लैया।
कहते हैं राम गुर, कैसा गुर, जो राम का स्वरूप है जिसमें राम बोल रहा, कहते उस गुरु के अंतर राम का स्वरूप था। राम गुर मोह मन लिया, उसने मेरे मन को मोह लिया, उसकी झलकी उसकी खूबसूरती रूहानियत की जो है वो हमको खींच रही, बेहाल कर रही। जहाँ हुस्न नहीं वहाँ इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पे शायदा नहीं होता। जहाँ रूहानी खूबसूरती नहीं वहाँ लगन और कशिश कहाँ। ये रूहानियती की खूबसूरती कशिश है, मिकना तीसी जो तुमको आकर्षण शक्ति खींच रही। जहाँ ये नहीं वहाँ लगन कहाँ। गुरु अपना प्यार आप ही लाए, खुद तवज्जो देता, पहले माता प्यार करती है कि बच्चा, माता करती। बच्चे का प्यार रेसिप्रोकल है, इसी तरह गुरु प्यार करता है, तवज्जो देता है, खिंचावट होती है वो खींचा फिरता, दोनों माँ कशिश जान बहन रहती। तो कहते हैं जब गुरु वो तवज्जो देता है उसका कशिश से क्या होता है, इंसान खींचा फिरता। हजूर कई बार लाहौर आया करते थे, लोगों ने आना हमारा, मैं डॉक्टर के जा रहा था दवाई लेने को, वहाँ पता लग गया हजूर का, मैं वहां से दवाई लेने नहीं गया, भाग आया। कोई कुछ कहता था, मैंने कहा भाई तुम नहीं भाग आए, खींचने वाले ने खींच ली। वो कशिश है। अगर भाई रेडियो हजारों मीलों से कशिश करके आवाज को पकड़ सकता है, अरे भाई तुम्हारे हृदय को वो क्यों नहीं खींच सकता। हमारा मुंह उधर होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा गुरु सात समुद्रों के पार रहता हो, सिख इस तरफ रहता हो, दीनी सुत पठा, डायरेक्ट करो, ताकत मिलेगी, कशिश मिलेगी। वो जिस्म नहीं, अगर गुरु को जिस्म जानते हो तो क्या लोगे जिस्मानियत। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हो स्वा, कैसा गुरु जो राम का स्वरूप। राम गुरु मोहन मोह मन लिया, मेरे मन को मोह रहा। कहते कभी तुमने देखा है कि दीवारों पर फूल उकरे हुए हो और उस पर बुलबुले आकर चाह चाहिए हो, कभी नहीं। सचमुच फूलों पर तो बुलबुले चाह चाहती हैं, राग अलापती हैं, मगर बनावटी फूलों पर नहीं। अरे भाई जिस हृदय में वो कशिशे मिकना तीसी है वो खैच चाहता तुमको, खींचे जाते। कहते उसने मेरे मन को मोह लिया, फिर आगे क्या बता, और अवस्था क्या बने। ये दर्जे बदर्जे जब प्रेम की लगन लगती है ना, कैसे इंसान कदम दर कदम चलता, आगे बयान करें।
राम गुर मोहन मो मन लिया, आकल बिकल भाई गुर देखे हूँ लोट पोट होइया।
कहते उसकी इतनी जबरदस्त कशिश थी, आकर्षण शक्ति थी, उसको देखकर न शुद्ध को न शुद्ध रही, मन को न होश रहती है, अपने आप पे से जा चुके हैं, दिल किसी से लगा चुके हैं, दिल कशिश में आ गया, आप पता नहीं दिन कहाँ चढ़ता है रात कहाँ चढ़ता है। कहते यही नहीं, उसकी कशिश ने इतना खींचा कि उल्ट कर गिर गए जमीन पर। ये होता, अब अक्ल वाले इसको नहीं जान सकते ये कैसे होता। देखा हमने हजूर के चरणों में कई आती थी, कशिश पकड़कर उल्ट गिर जाती। मगर जो आलिम लोग हैं, माफ करना, मैंने गुरुवाणी की तफसीर करती है किताब में पढ़ा है, बड़े आलिम फाजिल, नाम देने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं वहां तुक को बदल दिया। हाँ, आकिल बिकल बही बिन देखे, गुर देखे की तो पता नहीं कैसे गुरु को देखकर इंसान आकिल बिकल होता है, शुद्ध से बेशुद्ध होता है, ये तो समझ नहीं। कहते बिन देखे लिख दिया। चलो महाकोश में पढ़िए इसका जिक्र। तो कहते गुरु रामदास, गुरु आता है भूल जाते हैं, शुद्ध बुद्ध नहीं रहते। ये देखा करते थे हजूर के वक्त, बड़े बड़े सवाल लेकर जाते थे, वहां जाकर चुप, जेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं, जरा देख लेते हैं, दिल की तपन बुझा लेते हैं। वो उसमें अवियत में चला जाता है, सब भूल जाता है भाई, दिल की लगी की बात ही कुछ और है, दूसरे विचारों को क्या पता ये कैफियत क्या। ये हकीकी कशिश है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, तन की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। अरे भाई इसमें दो फर्क है, गौर से सुनिए। जिस्म की लगन में तुम जिस्म में फंस जाओगे, रूहानियत की कशिश तुमको पिंड से ऊपर ले आएगी, जिस्म उल्टा गिर जाएगा, पता नहीं लगेगा तुम थे भी कि नहीं। तो यहाँ जिस्म जिस्मानियत की मोहब्बत और इश्क का सवाल नहीं, यहाँ आत्मा की आकर्षण शक्ति का सवाल, जो अनुभवी पुरुष है वो जनरेट करता है, वो ताकत खींचती है सबको, जिनके मुंह उसकी तरफ होते, पूंजी मिल जाती है, उस पूंजी को बढ़ा लो। तो वो गुरु रामदास से बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। मौलाना रूम साहब ने एक जगह बतलाया, फरमाते हैं काबा में गर्दीद बरसर्रे कुए यक बुते। कहले मैं एक बुत को देखा, मुर्शिद का जिक्र करते हैं, कि जिस गली में वो रहता था उस गली के उनले सिरे पर काबा खुदा का घर परिक्रमा कर रहा था। या खुदा ईचे बुतेस या बुलाओ आपते, भाई कैसा ये हस्ती है, या को बला है या आफत है कि खुदा का घर भी परिक्रमा कर रहा है उसकी गली में जिसमें वो रहता। तो भाई वेदों शास्त्रों में ग्रंथों पोथियों में जो गुरु महिमा गाई है उसका कुछ मतलब, ऐसी हस्तियों के लिए नहीं माफ करना जो आज दुनिया में भरे पड़े हैं लोग। बट्टा उठाओ तो सैकड़ों गुरु मिलते हैं, साधु और संत मिलते हैं, अरे भाई उनकी नहीं, सचमुच अनुभवी पुरुषों की महिमा। ये कहा जैसे परमात्मा की तारीफ तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें परमात्मा प्रगट है उसकी भी तारीफ तुम कुछ नहीं कर सकते। सातों समुद्रों की स्याही हो, सब दरख्तों की कलमे बन जाएं, सारी धरती का कागज बन जाए, भी गुर 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 लिखा न जा उसकी क्या तारीफ होती, जिसके अंतर वो खुद इजहार कर रहा, वो पोल है समझे। अब ये बल्ब है, लाइट दे रहा, अब इसकी क्या तारीफ कर सकते हो, लाइट देना तो कह सकते हो, गोर रू तो कह सकते हो, अंधेरे को दूर कर रहा, मगर इसकी तारीफ क्या है आप बताए। यही बिजली जमीन में जरे जरे में समा रही है, मगर हमारा क्या बिगाड़ती और क्या बनाती है बताए। जहां वो बिजली एकत्र होके मुंजमिंद है, उससे कनेक्टेड जो चीज भी जोड़ोगे वो लाइट दे, वो तुम्हारा सारे काम बनाता है, बिगाड़ता भी, वो सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही अनुभवी पोष पूर्ण पोष वो पोल है जिसके अंदर वो पावर प्रगट हो गई। और एक और बात, और विद कमीशन दुनिया के प्रेसिडेंट तो प्रजा चुन लेती है, मगर गुरु दुनिया के लोग नहीं चुनते, ये प्रभु की तरफ कमीशन मिलती है। जाओ भाई जीव का उदाहरण करो, ऐसा महापुरुषों के जीवन में इस बात का इशारा आया। समझे, दस गुरु साहब कहते हैं परमात्मा ने कहा जाओ मैं सुत तो ही निवाज मैं तुझे अपना पुत्र बनाकर भेजता हूँ, जाओ भाई जहाँ जहाँ धर्म की अधोगति हो रही है वहां उभारो, अधर्मियों को दंड दो, ये करो वो करो। यही भगवान कृष्ण जी ने बताया, जहां जहां धर्म की गिलानी होती है मैं आकर अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए कमीशन है ना। गुरु नानक साहब आए, वो क्या कहते हैं, जैसे मैं आवे खसम की बाणी तैसा करी देना ज्ञान में लाल। हाफिज साहब ने यही कहा कि मैं खातुम दादो मुझे अंगूठी दी खुदा ने, जाओ भाई काम करो। एमए तो सारा जहान हो जाता, मगर उनमें से प्रोफेसर कोई कोई बनता। इसी तरह कमीशन किसी किसी को दी जाती है, संत भी बन सकते हैं मगर गुरु पद और ऊंचा। उसमें ये कोशिश जहां जाएगा वो गिरफ्तार करता, पकड़े जाता, जो जो जिस प्रभु के ख्वाहिशमंद उन खाए वो मिले या न मिले, कहीं भी हो दिल में कोशिश है बल्कि स्वरूप आता। मैंने देखा इंग्लैंड और जर्मनी और अमेरिका में जाकर कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने कभी हजूर को नहीं देखा था, मुझे नहीं देखा था, उनको स्वरूप जाकर जगाते, चलो भाई कई कई महीने जगाते रहे। तो ये उसका काम है कमीशन, इलाके का सवाल। तो कहते हैं उनमें ये कशिश है जो ख्वाहिशमंद है वो लोट पोट हो कर देते, उनको कोई चीज याद नहीं रहती। देख
आकल बिकल भाई गुर देखे हौ लोट पोट होए पैया हौ निरखत फिरों सब देश दिसंतर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चाहिया।
कहते मैं उसकी तलाश में फिरा देशों देशों में जगह जगह फिरता रहा, क्यों तलाश थी कहीं से मिल जाए, ये कायदे की बात है। तो ये ख्वाहिश प्रबल मिले सही, जिसकी तलाश हो तब जाएगा ना। मैं अपनी नौकरी के दिनों में दो बार ऐसे वाक्य आए, मैं नौकरी से लंबी छुट्टी लेकर चला गया, तलाश करूं कहां मिलता, कई हरिद्वार के जंगलों आगे पीछे फिरे, कई जगह फिरे, कहीं चीज ये न मिली, मिली तो घर बैठे अपने आप को शिष्य देने लगे, ये हजूर की दया थी। कई लोग मुझसे पूछते हैं तुमको कैसे मिले, भाई अपने आप आने लगे, तलाश थी डर था, लोगों के पास जाने से डर नहीं था, डर सिर्फ इस बात का था कि शायद मेरा तलक ऐसी हस्ती से आ जाए जो प्रभु को न मिला हो, मेरा जीवन तो बर्बाद चला गया। इस डर से मैं यही कहता था कि भाई हे प्रभु, अगर अगले जमानों में तू भक्तों को दर्शन दे सकता था तो अब क्यों नहीं दे सकते। कशिश चाहिए, तलब चाहिए, तड़प चाहिए, मिलता है जरूर मिलता, अगर नहीं मिल रहा तो अभी कहीं कहीं नुकसान है भाई। हम दुनिया के पुजारी हैं, दर पर्दा ऊपर से भक्त बने तो बड़े कहते मुझे ये बड़ी प्रबल ख्वाहिश थी, जगह जगह फिरा, किसी तरह से वो मिले थे, कहीं कई जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। जाते ये देखा प्राणों का संयम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर मुझे ख्याल आया मुझे कोई ऐसा साधन चाहिए समझे, जिसमें छोलों की रोटी खाकर भी गुजारा हो सके। गुरु अर्जुन साहब थे, जब पृथ्वीचंद थी उनके साथ वो मुखालफत करते थे, तो वो क्या ये लोग जगह सुनी बंदे होते थे, क्या चलो भाई तुम संभालो, किनारे हो गए। पिपली साहब का गुरुद्वारा अमृतसर में भी है, हमारे जो कई बार फरमाया करते थे अरे भाई तुम संभालो मैं चादर लेकर किनारे चले जाऊं। वो इन जमीनों के पुजारी नहीं होते भाई, वो हकीकत के पुजारी होते। तो वहां ये लिखा था, इतिहास बतलाता है कि लोग एक राव होती है ना, चले जाते हैं जहां जाते हैं बंदे अंधाधुंध, तो वहां उनके यहां लंगर मस्ताने रहते थे, छोलों की दाल मिलती, रोटी मिलती थी, तो छोलों की रोटी खाकर भी जो भजन, मैंने कहा भाई मुझे तो वो भजन चाहिए। समझे, जो बच्चा बूढ़ा जवान गरीब अमीर सब कर सके। ये मक्खन के पेड़े सिर में रखने ही से वो मिलता है, बादाम दिन में कई बार रगड़ पीने से मिलता है, तारे भाई गरीबों के लिए तो ना रहा। तो कुदरती जो साधन है ना वो सहज है, बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई कर सकते। ये क्या है, कल कोई मजबूर ले लिया जाए। फिलहाल सवाल यह है, अगर आप भाई या बहने प्रभु को पाना चाहते हैं तो दिल में हृदय में कंगी मार कर देखो तुम्हारे दिल में कौन सी ख्वाहिश प्रबल हो रही। अगर प्रभु के पाने की जबरदस्त ख्वाहिश है तो जरूर मिलेगा, कोई शक नहीं। अब से ही अगर प्रबल कहां से होगी, जहां प्रबल ख्वाहिश है उसकी शोभ संगत से बाहर मिलेगी। कोई साधन जो मिल चुका उसकी कमाई से अंतर में राज खुलेगा और तरक्की होगी। जब ख्वाहिश प्रबल होगी कोई शक नहीं कि तुमको क्यों ना मिले।
सब देश दिशंतर मैं प्रभ देखने को बहुत मन चाहिए।
मेरे दिल में बड़ा बहुत चाह है प्रभु के देने का। हम कहते हैं हमें खाने का बड़ा चाह है, कहते हैं हमें प्रभु के मिलने की बड़ी चाह है। बतेरी तलाश की, गांव गांव शहर शहर फिरे। ये मौलाना रूम साहब कहते हैं कि शहर ब शहर कूब कू गली हुए गली कूचा ब कूचा फिरो, ढूंढो तलाश करो कहीं से वो मिलता हूं। पर कौन फिरता जिसको जरूरत हो। अरे भाई गाना सीखना हो तो तान सहन की जूतियां झाड़ता फिरता, भागा फिरता कहीं गाना बजाने वाला बजाए। जिसको गाने बजाने के शौक ही नहीं, अरे भाई तान सहन उसकी जूतियां झाड़ता। गुरु नानक थे साहब थे, कसूर शहर में उनको दाखिल नहीं होने दिया। ये लोगों की अकलें बिखारता कुरैया बताओ। और उसी के मुतल्लिक कहा कि ये गुरु नहीं ये परमात्मा ही इसकी शक्ल में दुनिया पर फिर रहा। अभी तारीफ आई थी कि गुरु क्या होता, वो चलता फिरता खुदा। पहले वो इंसानी शक्ल मालूम होता, जब आंख खुलती है तो उसी में कुछ और नजर आने लगता। इलाही हम उसे समझते थे क्या और वो क्या निकले, जब आंख खुली कुछ और ही दिखाई देने लगा। बुले शाह शाह इनायत के पास गए, जब मिले हैं तो कहते आमों का दरख्त था, दृष्टि साधन से आम तोड़ा जेब में डाल लिया। शाह इनायत आ गए, कहले तुम हमारे चोर हो। कहले महाराज मैंने तोड़ा नहीं। कहले मैं भी जानता हूं जैसे तोड़ा, मेरे पहले उसको धोखा देना चाहता। फिर जब आंख खुली तो कहने लगे मौला आदमी बना। गुरु रामदास जी साहब के मुतल्लिक गुरु अर्जुन साहब क्या फरमाते हैं, हर जियो नाम परे और रामदास। रामदास इंसान नहीं, हरि का नाम ही रामदास है भाई। तो वही पहले इंसान मालूम होता। अगर इंसानियत हम जिनसियत कुदरती खासा है, अगर हमारी तरह आकर मिले जुले नहीं, हम सुनने को कब तैयार हैं, माफ करना। शमस तबरेज़ साहब कहते हैं कैदियों मैं तुम्हारे दरमियान आज कैदियों में नजर आ रहा हूँ। कहता मेरे अंतर नजर मार कर देखो मैं किस वलायत का बादशाह हूँ। वो झलके देते कमीशन बतलाते। हजूर थे हमारे एक रात बैठे हुए, रात का समय था, अपने आप इन याद रखो आपको श्वान वही पूछो खुला छोड़ दो, जकड़ों में रखोगे अपना नुकसान उठाओगे, जो बातें उन्होंने करनी है वो भी नहीं करें। बैठे थे अपने आप कहने लगे सिंह महा जो हम जब आते हैं ना अपना स्टाफ काम करने वाला साथ ले आते, जब एक तरफ हमारी फतेह हो जाती तो हमको फिर दूसरी तरफ भेजा जाता। इसका क्या मतलब, अपनी कमीशन का इजहार कर रहे थे। वैसे पूछा नहीं मैं दास हूं भाई, यही कबीर साहब ने कहा। कहे कबीर हम तुर करके भेजी लाए हुकुम हजूरी, हम दूर घर के भेद की जानने वाले हैं, परमात्मा के हुक्म लेकर आए हैं दुनिया को सुन।
सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए धरतावला का, सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पो न सके का, जिसको सुनने से काल यमराज भी नजदीक नहीं आ सकता। बाहर की बानिए गाते बजाते हमारा छिड़कता इंसान मर जाता, माफ करना। इसका ये नहीं मतलब कि बाहर की बानी ना पढ़ो, पढ़ो ये बानी जो कह रही है वो मानो, यही बानी हमको कहती है कि एक और बानी है जो खंडो ब्रह्म चार युगों से बजती चली आई है, सब में समा रही है, गुप्ती है, प्रगट हो सकती है, अंतर में ज्योति है उसमें आ रही है, बड़ा खोल खोल, यही नहीं और महात्माओं ने भी यही बयान किया, पलटू साहब ने बिल्कुल लफ्ज उनके अपने हैं मगर बयान यही किया, फरमाते हैं उल्टा कुआ गगन में तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग बिन रोगन बिन बाते, ये गगन है इसके उल्टा कुआ है इसमें चिराग जल रहा है, बगैर रोगन और बत्ती के जल रहा है, छह महीने छह रुत और बारह महीने जल रहा है। ये किसको नजर आता है, कहते जहां को गुरु मिला हो ताकि नजर में आवे, दूसरे को नहीं, जिसको को गुरु मिला उसको ये नजर आता है। फिर आगे और क्या कहते हैं, एक आवाज निकले तिस चिराग की ज्योति माही, उस ज्योति में एक आवाज निकल रही है, कौन सुनता है, ब्रह्म ज्ञानी सुने और को सुनता नहीं, समाधि में जाकर ब्रह्म ज्ञानी लोग सुनते हैं उस ध्वनि को, ये उसकी महिमा गाई जा रही है। सब महात्मा एक बात कहते हैं, सिर्फ हमको खुशहाला दिल होकर सब महात्मा की बानियां करें तो हमें वही चीज हर एक जगह, हर एक महात्मा जो गए आकर बात तो वही बयान करें, परमात्मा तो एक है भाई, न दो हुए न दो हो सकते हैं, जो उस तरफ गए वो भी सब एक ही बात बयान करते हैं, जवान दानी अपनी रही, स्त्री का बयान अपना रहा, हर चीज वही बयान कर रहे हैं, एक आवाज निकसे त्राह की ज्योति भाई, ये तो कह रहे हैं पलटू था, उधर फरमाते हैं अंतर ज्योत निरंतर वाणी खाचे सांस ले लाई, बताओ क्या फर्क है।
सतगुर पूरा शब्द सुनाए, अन दिन भक्ति करो लेवलाए,
चले भाइयों जब सतगुर मिल गए तुमको शब्द सुना दिया, फिर दिन रात उस भक्ति में लग जाओ जी,
हर गुण गावे सद निर्मल, निर्मल गुण पाशाह है,
कहते हर गुण गाए सद ही निर्मल, हरि के गुण गाओ तुम हमेशा के लिए निर्मल हो जाओगे, कहते क्यों, क्यों वो पाशाह जिसके तुम गुण गाओ वो निर्मल है, जब निर्मल के गुण गाओगे निर्मल ही हो जाओगे, और क्या, वो सब आलाशों से रहता है, जब उसके साथ जुड़ोगे तुम भी आलाशों से रहते हो जाओ।
गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बुझ कोई,
कहते हैं गुण का दाता सच्चा सोई, यार इस गुण के देने वाला कौन, वो एक मालिक जिसको वो चाय दे, इसको आप गुण करके बयान करते हैं, किसको मिलता है आगे फरमाते हैं गुरुमुख बिरला बूझे को, कोई गुरुमुख होकर कोई बिरला गुरुमुख उसको ये दे जानता बूझता, बाकी ये दात परमात्मा देने वाला नाम की दात, कौन बूझता है कोई बिरला गुरुमुख, जो गुरुमुख हो मनमुख ये जायदाद नहीं, जिस जो ऐसे अन बड़ी पुरुष के सन्मुख बैठा हो उसके हालात के मुताबिक काम करके जीवन बनाया हो, नाम की कमाई करके उसके चरणों में बाकायदा हदायत के मुताबिक चलता रहा हो, वो इस गति को जान जाता है कि नाम किसको मिलता है, जिसको वो आप दे तोर कलम पाया तो जिनको से नाम हर के लाना, कौन आनते सुखो आते घर आनंद, ये उस मालिक जिसको मिलाना चाहता है उसको इस नाम के साथ जोड़ता है। देखिए जय वट भाग होवे वट भागी हर नाम दिहाए, बड़े ऊंचे भाग जागे तब इस नाम के ध्याने वाला हो, बाहर यक्षी नाम तो सारा जहाने कुछ न कुछ कह रहा है, नाम का ध्याना कुछ और है, बाहर यक्षों का उच्चारण करना महात्माओं की बानियों का गाना बजाना कुछ और बात है। गुरु रामदास जी साहब ने सिख का प्रोग्राम जो दिया है उसमें लिखा है साहब, गुर सतगुर का जो सिख अखाए पलके उठ हर नाम दिया है, पहला जो गुरु कैसा जो सत का स्वरूप है उसका सिख अपने आप को कलवाता सुबह उठकर नाम के साथ नाम को ध्याए अंतरात्म में जुड़े, क्या कहते हैं, इस उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नहाए, पुरुषार्थ करके पिन्नंद ब्राह्मण के पार अमृतसर में स्नान करें। अमृतसर ये वाणी गुरु रामदास जी की है और बाहर का श्री अमृतसर साहब गुरु रामदास ने शुरू किया, गुरु अर्जुन साहब ने मुकम्मल किया है, मगर गुरु अमरदास जी की वाणी में अमृतसर का भी जिक्र आता साचा अमृतसर काया पाई माहे मन प्रिये भाई सुभाई हो। सच्चा अमृतसर काया के अंतर है, हर एक इंसान के अंतर है। सो अमृत का सरोवर पिंडन ब्रह्मंड के पार है, उसको हौजे कौसल मुसलमानों ने बयान किया है और हिंदू फकीरों से प्रयागराज का कि कम से कम पिंडंड और ब्रह्मंड के पार जाए, आत्मा से तीनों गुलाफों को उतार कर अपने आप को जाने में आत्मा को परमात्मा में लाया यहाँ तक। फिर क्या कहा, दिवस चढ़े गुरबानी का आचरण का, दिन चढ़े गुरुबानी का उच्चारण करे। हम नाम को ध्यान तो भूल गए, सिर्फ गुरुबानी का उच्चारण ही को नाम क्या ध्यान समझ लिया। भाई गुरुबानी अपनी जगह कीमती चीज है, हीरे जवाहरात से कीमती है, मगर यही गुरुबानी कहती है कि नाम को ध्यान कब, जब सदगुरु शब्द सुनाए फिर इसी भक्ति में दिन रात लग जाओ। नाम का ध्यान कुछ और है, वाणी का पढ़ना कुछ और। वाणी एक गोद है बच्चे की, गिरेगा फिर जाग उठेगा, ये आधार है, मगर दूध है नाम। समझे, नाम के दूध के पीने के लिए वाणी हमें उपदेश दे रहे, दोनों लाजम मलजूम। महात्माओं की वाणी उभार देने वाली है। कोई महात्मा आपको ये वाणी क्यों सुनाता है, भाई फलाना महात्मा भी ये कहता है, फलाना भी ये कहता है, फलाना भी ये कहता है। अरे भाई जो सब एक ही बात कहते हैं, अरे भाई तुम भी करके देखो, शक ना रहे ना, तजर्बे की खातर एक्सपेरिमेंटल मेजर के लिए तो आप कर सकते हो ना। जब अंत में सचमुच वो चीज तजर्बे में आने लग जाए, रुपए में से दो चार पैसे तो ज्यादा की उम्मीद हो जाती है ना। असल बात है, कोई महात्मा किसी वाणी का मोहताज नहीं है, वो उस चीज को पा चुका है जो वाणी बयान कर रहे, जो पा चुका है आपको जोड़ देगा, आपको पेश करेगा मुख्तलिफ महात्माओं की वाणी, इसलिए कि तुमको यकीन आया कि यही चीज है जो सब महात्मा बयान करते हैं। वो नई चीज नहीं, पुरातन से पुरातन है, चीज वही है। एक नाम जो चारों डाले, चारों युगों में जीवों की कल्याण कही, वाणी भी चारों युगों में बजती चली आई, शब्द भी चारों युगों में जीवों की कल्याणकारी रहा, बात तो वही बयान कर रहे। जो उसका शब्द दाता शब्द के साथ जुड़ा आपको जोड़ दे, आपका काम बन जाए। बात जुड़ा हुआ ही जोड़ सकेगा, दूसरा नहीं। ना ये काम आलमों से होगा, ना अमीरों से होगा, ना हाकमों से होगा, ये किसी आमिल पुरुष से, जो अनुभवी पुरुष है, जो खुद जुड़ा, कोई जन हर्षो देवे जो, फिर तुम उसके सेवने वाले बनो, काम बन जाएगा। दे
गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बुझे कोई, नानक जन नाम सलाए विग से, सो नाम बेपरवाह है।
अब गुरु अमरदास जी साहब कहते हैं जो नाम को कमाई करने वाले हैं वो दिनों दिन खिरते चले जाते हैं, विगते प्रफुल्लित होते हैं। कहते हैं वो नाम कहते हैं कि वो बेपरवाह चाहे सबको आधार देने वाला, सबकी संभाल करने वाला, जरे जरे में संभाला, जिन्हीं नाम तिहाया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुखजले के तिचुटी। जिन्होंने नाम को ध्याया है उनकी जीवन की मुशक्कत सफल हो गई, कहो उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ अनेकों जीवों का उधार, गुरुमुख कोट उधार दाते नावे कड़ी। यह है गुरु अमरदास जी साहब की वाणी जो आपके सामने रखी है, कितना वाजे मजमून और साफ है। एक नाम खाए उसको किसी जबान में किसी और तरह अदा करो, सब महात्माओं ने इसी का जिक्र किया, जिसकी कल्याण हुई नाम से हुई, जिसकी हो रही है नाम से हो रही है, और इसी से आगे भी अभी कानून बदला नहीं, चारों युगों से एक ही कानून रहा है और रहेगा। ये पुरातन से पुरातन साइंस है, सनातन से सनातन है, मगर हम भूलते रहे, महात्मा आकर उसको ताजा करते रहे। जो जो उस वक्त की जबान दानी थी उसमें वो बयान करके चले गए। आज उन सब की बहानी हमारे पास मौजूद है। हम खुशकिस्मत इंसान हैं, 20वीं सदी में जितने महात्मा हैं सबकी वाणी हमारे पास मौजूद है। सबके पढ़ने से हमें क्या मालूम होता कि साइंस एक, नाम एक है, प्रभु एक है, घट घट में है। हम जिस्म का रूह बने बैठे हैं, जब तक कोई महात्मा हमको पिंड से ऊपर ना लाए उसके साथ जोड़े नहीं, ये दौलत दबी आती है और दबी चली जाती है। हम भूखे के भूखे मर जाते हैं। भीखा भूखा को नहीं सबकी गति लाल, गिरा खोल नहीं जानते ताते रह कंगाल। अभी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गिरा में नाम लूपी लाल बना पड़ा है, क्योंकि जड़ और चेतन की ग्रंथि बंधी पड़ी है। हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, ये ग्रंथि हमको खोलनी नहीं आई। इतनी दौलत के होते हुए भी हम भूखे के भूखे मर रहे हैं। अब ये उपदेश किन लोगों को है? सारी मनुष्य जाति को एक जैसा उपदेश हमेशा से रहा है और रहेगा। जिनको ऐसे महापुरुष मनुष्य पाकर मिल गए, ये उसके चरणों में बैठ के उसके मुताबिक उसके सेवने वाले बन गए, उनकी जीव की कल्याण होगी। जन्म मरण से रहित हो गए, उनके साथ और कई जीवों की कल्याण हो गए। शौक है जिसे वो देख रहे हैं वो कुछ और है, और जिस आंख से अनुभवी पुरुष दुनिया को देख रहे हैं वो आंख को आम दुनिया तो जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे, क्योंकि उनकी आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है। इसलिए वो जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया में बर्ताव कर रहे हैं, वो सब जिस्म के लेवल से जिस्म का रूप बने बैठे हैं। इतने आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि वो अब तमीज नहीं कर सकते कि मैं और हूं। और जिन अनुभवी पुरुषों की आंख खुल चुकी है, आत्मा पिंड से ऊपर आ गई, वो आत्मा के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं। वो देखते हैं जिस मिट्टी का ढेर है ये बदल रहा है, जगत के जरे जरे बदल रहे हैं, वो किसी और नजर से दुनिया को देखता। यही एक धोखा, जो जिस्म के लेवल से देख रहे हैं वो समझते हैं यही सब कुछ है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो, इससे परे और क्या है? कुछ नहीं। अगर फरदौस बरुए जमीनस अमीनस तो अमीनस तो अमीनस, अगर कोई भाई सचखंडा है कोई स्वर्ग है तो यही दुनिया, खाओ पियो और मजे करो, बस इससे परे कुछ नहीं। कोई किसी को अरे भाई आखिर जिस्म छोड़ना पड़ेगा तो मर जाएंगे, मरते मौत आएगी तो मर जाएंगे, मुझे कोई अकलमंदी का जवाब नहीं। सवाल तो है कि जिस्म को एक दिन छोड़ना है, हम जिस्म नहीं है, इसके चलाने में वो चलाने वाला कौन है वो हम है। जब तक उसको एनालाइज करके पिंड से ऊपर लाकर जड़ और चेतन को अलहदा करके नहीं अनुभव नहीं करोगे, तब तक सही नजरी नहीं आएगी। तो इस वक्त आपके सामने गुरु अर्जुन साहब का छोटा सा शब्द रखा जाता, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं, फरमा रहे हैं, सुनिए गौर से।
राग राम कले महला पांचवा। कोटी बदले त्यागे रतन, जाए ताहू का जतन।
अब देखिए वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिंदगी की कीमत सबसे बढ़कर किस चीज में? हम जिस्म रखते हैं, के बाहर के कपड़ा मकान जायदादें रखते, बाल बच्चे रखते। जब एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी कीमती पोशाक हो फट जाए तो कहते कोई फिक्र नहीं मैं बच गया, ज्यादा कीमती है। घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, ये मकान में था, बाहर निकल आया, कह अच्छा भाई मैं बच गया, सब पना हो चुका, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, जिस्म का कोई हिस्सा टूट जाए, हाथ पांव नाक बाजू कोई चीज, कहते कोई फिक्र नहीं मैं बच गया। बाहरी सामानों से कीमती चीज ये जिस्म है, जिस्म से कीमती चीज हमारा अपना, और आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन है, जिसकी वो जात का कतरा आत्मा चेतन है, महाचेतन प्रभु इसकी जान की जान, आत्मा की आत्मा, वो सबसे ज्यादा कीमती चीज। What does it profit a man to gain the possessions of the world and lose one's own soul? क्या हुआ, सारी दुनिया की सामग्री इकट्ठी कर ली, सबके मालिक बन गए, मगर अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, तो कीमती चीज क्या हुई, आत्मा, हमारा अपना या ओवर सेल्फ कहो, परमात्मा, मगर अब ये कर क्या रहा है, जिस्म की कीमत बाहरी सामानों की कीमत कौड़ी के बराबर, आत्मा की नजर से लिहाजा वो लास्टिंग है, हमेशा रहने वाली चीज है, और जिस्म जिस्मानियत के तालुकात सब टेम्परेरी, थोड़े दिनों के, आखिर जो निज मरण है तो कौन आवे काम, ये तुलसी साहब कह रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आत्मा बड़ी कीमती चीज है, परमात्मा उससे ज्यादा कीमती चीज, उसकी तरफ तवज्जो नहीं, जिस्म और जिस्मानियत जिसकी कीमत कौड़ी के बराबर है उसमें लगे पड़े, कौड़ी बदले रतन त्यागा, बड़ी बेशकीमत चीज अपना आपा और प्रभु भगवान का हो, उसको हम कौड़ी के बदले बेच रहे। हज़रत यूसुफ को आपको पता है, जब खरीदार आए तो एक सूत्र सूत की अट्टी के बदले खरीदा गया, यही हम कर रहे हैं, दुनिया हमको भारी है, जिस्म जिस्मानियत के तलकात ही सब कुछ है हमारे लिए, इसके बदले बड़ी बेशकीमत चीज जो है उसको हम गवा रहे हैं, उसकी तरह हम तवज्जो नहीं रहे, जिस मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला, इसमें हमने उस रतन को जानना था, उस हकीकत को पाना था, अपने आप को जानकर प्रभु से वासिल होना था, ये मनुष्य जीव का सबसे बड़ा आदर्श है जो इसने पाना था, मगर ये कर क्या रहा, जिस्म जिस्मानियत के कामों में लग रहा। गुरु निशा फरमाते हैं, प्राणी तू आया लाल है, लगा किसको पकड़े सब मुक्ति चली रहा है, ऐ प्राणी तू दुनिया में आया था इसे परम अर्थ हासिल करने के लिए मनुष्य जीवन से, मगर तू किन फजूल कामों में लग गया, को पकड़ा फजूल काम, तेरी आयु रूपी रात्रि खत्म हो गई, अभी करने करना है तो नहीं, ये दुनिया क्या, अब देखिए एक आंख खुली महात्मा का ये बयान है, वो आत्मा की लेवल से देख रहे, और हम सब क्या देख रहे, हमें यही दुनिया सकता बाकी कुछ नहीं। तो गोविंद साहब फरमाते हैं, कौड़ी बदले रतन त्यागे, छोड़ जाए ताहू का जतन, जो चीज छोड़ जानी है उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है, सुबह से शाम तक, बताओ हम क्या कर रहे हैं, किस्म को पाल रहे हैं, बाल बच्चों को पाल रहे हैं, जायदादें बना रहे हैं, रुपया एकत्र कर रहे हैं, आलिम फाजिल बन रहे हैं, यही कुछ कर रहे हैं, फिर ये चीजें साथ जाने वाली नहीं, जिसने जाना था उसको भी नहीं पहचाना, हमें अकलमंद काम का है, सवाल तो ये, या तो ये किसी मूल से मूल पुरुष का काम है माफ करना, या किसी अनजान पुरुष का काम है, या तो अनजान हो, पढ़ लिख कर आलम फाजल होते हुए देखते हुए हम मूलों के मूल बन रहे हैं। कबीर साहब क्या कहते, रावण वेदों का भाष्कार पंडित था, मामूली हस्ती नहीं थी, नेचर की ताकतों पर उसको कंट्रोल था, सोने की लंका थी, इसे बनकर और क्या हो सकता, मगर एक अनुभवी पुरुष की नजर से उसकी क्या कीमत पड़ी, मूर्ख रावण क्या ले गया, वो मूर्ख था भाई, वो क्या ले गया, मनुष्य जीवन पाया मगर बर्बाद कर गया। तो आप जिनकी आंखें खुली हैं वो तो किसी और नजर से देख रहे हैं, वो हम पर रहम करते हैं, हम कहते हैं ये पागल है, हम हमारा वक्त जाया करते हैं, हमें फुर्त नहीं, जबरदस्ती हमको खींचते हैं, शायद इनकी कोई गर्जी होगी और क्या, छोड़ जाए किसका श्रम कराए, संग सहाय किस पर हराए, जो चीज छोड़ जानी है उसको तो दिन रात करा, जिसने आत्मा का सच्चा साथ देना उसकी तरफ तो जो जो कर छठ गोवाना किस लगा मनमा है, जो घर एक दिन छोड़कर गवा देना वो तो ये दीन ईमान करके लगा पड़ा, जिते जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता, अफसोस जहाँ पर अरे भाई तुमने जिसने छोड़ा कहीं तो जाओगे ना, उसका कोई फिक्र इस हालत में दुनिया जा रहे, जो चीज लास्टिंग है उसके लिए परवाह नहीं, जो चीज टेम्पररी टॉन्चिंत है छिन भिंगर है पासिंग फेज है वही हमारा दीन ईमान बना, नतीजा पर क्या ये चीजें तब्दील हो रही हैं, ये कभी हमारी सोच से जुड़ती है कभी उखड़ती है, दुख का कारण बन रही है, इसीलिए कहा नानक दुखिया सब संसार, दुनिया में आया नानक कोई भी सुखी नहीं, सब दुखी। तो गुरु अन्य साहब बड़े प्यार से समझा रहे थे, ऐ भाई तू रतन को त्याग रहा है कौड़ी के बदले, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक नज़म में लिखा है कि हे प्रभु प्रार्थना करते, हे प्रभु मैं जानता हूँ तुझ में ला इंतहा दौलत, मगर ये जानते हुए भी मैं इस घर के जिस्म के घर के खसो खाशा कूड़े और कुरकुर को बाहर नहीं फेंक सकता, हमें लेकिन पुरुष इस बात को महसूस करो, जिसकी आंख खुलेगी वो यही करे, थोड़ी खुले या ज्यादा खुले, क्योंकि इधर की परमारस की अलभ शुरू कहाँ से होती है, जब पिंड से ऊपर आओ, बाहर का सिलसिला बंद करो, तीन दुकान बर बंद और बुद्ध दुकान, जब बाहरी जिस्म जिस्मानियत की दुकान तुम बंद करोगे ना, ऊपर आने का ख्याल होगा तो ये फजूल मालूम होगा,
तो संचे जो अच्छी बात माया मोया टेढ़ो जात,
ये किस काम में लगा है, उन चीजों को एकत्र करने में लग रहा, जो चीज इसके साथ जाने वाली नहीं, अरे भाई उसको होची मात वाला कहोगे कि नहीं, अकलमंद तो नहीं कहोगे ना, आपने जाना है अभी घंटे में, आप मिट्टी के खिलौने बना रहे जाने का फिक्र ही नहीं, तो ये ऊंची बात नहीं तो और क्या होगा, कोई अकलबंदी थोड़ी, होश पुनः उसको कहते हैं जिसने चीज को दे और फिर उसी में लगा रहे और उसको फिर बड़ा अच्छा फखर का कारण समझे, एक तो होता है ना करे और फिर भी शायद गलती महसूस करे, नहीं ये बहुत ठीक है जाऊंगा, चलो ये ऊंची बात, माया में मोया हुआ है, माया कहते भूल का नाम, अपने आप को भूल चुका है, जिस्म का रूप बना बैठा है, जगत का रूप बना बैठा, हकीकत नजर नहीं आ रही, जिस्म के लेवल से शायद दुनिया को देखकर एक बड़े भारी धोखे में जा रहा, इसमें मोया मोया इसमें लंपट हो रहा, इतना खिंचावट में जा चुका, छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकते, ऐसी हालत में जो बात भी करता वो टेढ़ी करता सीधी उसको आती नहीं, करेगी क्या, टेढ़ी तो खुद खुद बन गए, जब जिस्म जिस्मानियत के नजर से बनी तो फिर सारे एंगल बदल जाना हुआ ना, कबीर साहब ने एक जगह कहा है चलती को गाड़ी कहे बने दूर को खाया, एक शब्द उच्चारण किया बारी मिसाने दे कि गाड़ी चल रही है उसको तो ये गाड़ी पड़ी है जमीन, खोए का खोआ दूध का असर निकल आता है सारा, कहते ये लास्ट खोया मैंने लास्ट, चल ये हालत दुनिया की देखकर कबीर साहब कहते हम रोड क्या कर रहे हैं, अब बताएं उस एंगल से देखिए इस सारे सिलसिले को, और जिसमें हम जा रहे हैं उसको देखिए क्या कर रहे हैं, हमें इस बात का एहसास ही नहीं। वो जागते पूछ के आ रहे भाई तुम ये करो, वो कहते आंखें खोलेंगे क्या कहता है, हम तो ठीक ठाक। इनकी नजर से वो पागल है, उनकी नजर से ये पागल। स्वामी रामतीर्थ को ये कहा गया कि महाराज ये जो कुछ तुम करो ये पागलपन न हो। कहते हाँ भाई, पहली बात तो ये है कि इस पागलपन पर हरफ उठाने का उसको हक है जिनको दोनों तरफ के पागलपन का तजुर्बा हो। उसका तजुर्बा मुस्लिम दोहराए होगी ना। कहते हाँ हम पागल हैं, पागल गल को पाकर पागल बन गए और तुम फजूलियात में जा रहे हो। कहते ये सौदाई पुनः ना हो। कहते हाँ हम सौ दाव के जानने वाले हो गए, हकीकत के छिनास हो गए, हर एक चीज के राज को जानते हैं, तुम दुनिया में दर बदर से आए। तो कितना भारी फर्क है देखने का, कहाँ आंख खुली महात्मा का ध्यान, कहाँ हम लोगों का जेजू के घाट पर बैठे। तो महात्मा का पहला काम क्या, पिंड से ऊपर आओ, छोड़ो इस झगड़े को, ये देखने वाली आंख भी बदलेगी, सब कुछ होगा। जब ये जिसमें मिट्टी का ढेर भासने लगेगा, ऊपर अंदर रास्ता खुल जाओ, बाकी भाई ये मिट्टी का ढेर आखिर मरते हुए ये तो हम छोड़ जाते हैं, जिस चार भाई उठाकर शमशान भूमि में पहुंचा देते हैं। तो वो जब हकीकत सामने नजर आने लगती है तो फिर शक की गुंजाइश किया है। कहते ये होची बातें कर रहे हैं सब, समझे, सोच संचय जो होची बात, जो होच खोने में शामिल है। माया में मोया हुआ इंसान लंपट हो रहा, आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, एक नशे में चू जा रहा है, जो बात करता चेड़ी करता। अब आगे
आगे तैनाज नाही, अभागे तैनाज नाही।
फरमाते हैं अभाग जी बड़े प्यार से समझे, अभागे तैनाज नाही, तुझे शर्म नहीं आती। अरे भाई तू आत्मा है, तू थी सतनाम की गोती, तू तो सतनाम की गोत वाली थी, मन के साथ यारी इख्तियार कर ली, चूड़ा है मन, इंदू के घाट पर गला देती है, आंखों में गिर जाती है, कानों में मैल जाती है, नाश्ता में सीन जाता है, जबान से लाले जाती है, सारे बदन से पसीना जाता है, सब जगह गंदगी गंदगी है, उसकी यारी चूड़े के साथ यारी कर ली तो तुझे शर्म नहीं आती। तेरा तो ब्याह किसी बादशाह के लड़के से होना, तुझे शर्म नहीं। नशे में ने तो अरशेष, नशे में ने तो शर्मत बाधा, एक ही बात हम महात्मा कह रहे हैं, अरशेष नशे में ने तो शर्मत बाधा, ऐ आत्मा तेरे रहने की जगह वो अर्श है, तुझे शर्म होनी चाहिए। कहानी और मुकीम खत खाक से हुई, कहाँ के रहने, कहा मिट्टी और पानी में फंस रहे, शर्म नहीं आती तुझे। यही गुरु अर्जुन साहब के अब आगे मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला था, ऐ अभाग जी मनुष्य जीवन पा कर भी तुझे शर्म नहीं आती। अब आगे तै लाज नहीं, क्या कर क्या रहा, आगे कहते करना क्या था, आगे बतला था।
सुख सागर पूरण परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही।
कहते तो दुनिया में सुख की तलाश में है, हर एक इंसान सुख की तलाश में, रुपया कमाता है किस लिए, सुख के लिए, मकान बनाता है किस लिए, सुख के लिए, खाना पीना पहनता है कपड़े ये वो किस लिए, सुख पाने के लिए, आदर्श सुख, मरिश में सुख है नहीं, ये चेंजिंग चीज है, चेंजिंग पैनोरामा, ला तगैर ला तबदल नहीं, तब्दील पजीर है, दम दम एक एक सेकंड पर बदल रहा, मैटर इज चेंजिंग, इसमें सुख कहां। और फिर आत्मा चेतन है, ये जड़ सामान है, चेतन को अगर सुख हो सकता है तो केवल चेतन सामान ही से लगने से हो सकता, वो स्वयं प्रभु की ओर कोई नहीं। तो कहते अरे भाई तू सुख की तलाश में है, मर गलत जगह पर,
तो जिस्म जिस्मानियत के भोगों रसों के भोगों रसों में तलाश कर रहा है, बाहरी सामान और सामग्रियों के एकत्र करने में लग रहा है, बड़ी बड़ी इल्मियत के डिग्रियां हासिल करने में लग रहा है, उनमें भी सुख नहीं। सुख तेरी जात में था, तो वो जिस्म नशा और सरूर था, निजानंद के समुद्र के ठाठे मारता लहर था, जिस्म जिस्मानियत में तू अपने आप को खो बात, तो अपने आप को पहचान। और वो प्रभु सुख सागर पूर्ण प्रवेश, जो सुखों का समुद्र है, पूर्ण है परमेश्वर, हर न चेत्यो मन माये, उसको साथ तेरा लगाव नहीं बना। सुख तो उसमें था, चेतन को चेतन में सुख हो सकता, तू कहां तलाश कर रहा है तुझे? अरे भाई शर्म नहीं आती, अब आगे तय लाज ना ही, कितने जोरदार लोगों को फरमा, दुखी होकर फरमा, हमारे जीवों की सिंपैथेटिक हम दर्दी करके, अरे भाई तुम क्या कर रहे थे, होश में आ। एक मुसलमान फकीर ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि हमारे मिट्टी के प्याले में शराब भरी थी, इस किस्म का जिक्र करते, कहते वो इतने मलिया मेट हो गए कि अब उनमें भू भी नहीं आती, इनमें कभी शराब थे। आत्मा निजानंद का कतरा कहो, और ये जिस्म जिस्मानियत का रूप में बनकर अपने आप को भूल चुका है, उस नशे से दूर जा जी। अगर इन से हटे तो वो नशा मुजस्म है भाई, असल बात तो सिर्फ इतनी, हटो बस एक लफ्ज, इन्वर्ट अंतर जाओ, थोड़े लफ्जों का टैप इनसाइड, एमर्सन कहते हैं, फैलाओ से हटोगे अपने आप में नशा आने लग जाए। आखिर हम नशे के समुद्र के तो कतरे हैं भाई, हम भी नशा का स्वरूप, खुमार है, नशा है, निजानंद है। सब महात्माओं ने इसने अपने अपने तरीके में बयान किया, मगर इस राज को प्रैक्टिकल आमिल पुरुषों के चरणों में ही इंसान जाते हैं। हाउ टू इन्वर्ट, हम अपने आप को बाहर की तरफ से कैसे हटाकर अपने निजानंद में जाग सकते हैं? जिन्हें अपने एकत्र की माहियत को जान लिया, वो समुन्द्र को किसी हद तक जान सकता, वो क्या ऑल नहीं। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से, सुख सागर पूर्ण परमेश्वर, हर न चेत्यो मन माही, अफसोस सारे भाई तुझे शर्म नहीं आते। वो सुखों का समुद्र जिसकी जात का तू कतरा है, तो उस तरफ मतवजे नहीं हो रहा, अपनी तवज्जो को तो नहीं लगा रहा, इकराहो आगे दिया है कि दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा मुसलमान अमर जोर दे रहे हैं।
अमृत कौरा बिखिया मीठी, ताकत की बेदनों दी थी।
ये वही मजमून है जो अभी सूरदास जी करवा रहे थे, क्या अमृत कौड़ा बिखिया मीठी, जो अमृत है अमर कर देने वाली चीज है, वो तो हमें कौड़ी भास रही है, और जो बिखरा जहर है वो हमें मीठी भास रही है। जहर क्या और अमृत क्या? अमृत अमर कर देने वाली चीज प्रभु का नाम, अमृत एको नाम, वो कहां पर मिलता है? नौ दरवाजे नवे दर फीके, ए अमृत दसवीं विजय, जिसम के दस द्वारे हैं, नौ तो प्रगट हैं, दो आंखों के दो कान दो नाक का मुंह बुदा और इंद्री, ये फैलाव में जाने वाले रस्ते, नौ कर देख जो कामुर भूली बस अनूप न पाए, अंतर्मुख होता नहीं उस अनूप बस को पा नहीं सकता। दसवें तत् समाये, दसवें में अमृत है, ये अमृत दसवें चीज जब वो बैक दी आए दो बड़ी बात पीछे, नाश का कौमर भाव जो भगवान की जिंदगी गीता में फरमा रहे, उसके पीछे हटने में था, अब उस तरफ हटना तो कौड़ा मार्ग रहा, जो अमर जीवन वहां मिलना, जो फैलाव में जा रहा है ये माया फैलाओ एक्सप्रेशन इजहार, ये मीठा मालूम हो रहा, इधर से हटना कौड़ा मालूम हो रहा, हालांकि हटे शरे मारे कहां शुरू होता, तुलसी जग जाने नहीं अति यो तंग पिया पंत, प्रभु के पाने का रास्ता अति तंग और तार आंखें बंद कर तो अंधेरा है, बारो हटो तो अंधेरे, तंग और तार ये शरे मारेगा, इधर जाना तो कौड़ा मालूम हो रहा, जो फैलाव का मारेगा वो अमृत मालूम हो रहा, देखने वाली आंख उलट रही, कहते ये दुनिया की हालत है, साकत की विद न नो दिखी। कहते हम साकत किसको कहते हैं? जो प्रभु से टूट गया, जिसकी आत्मा और प्रभु के दरमियान सत्ता आ गया, उसका नाम साकत। जो पिंड का रूप बना बैठा, उसका नाम साकत। कहते हमने जो प्रभु से टूट गया, अंतर्मुख नहीं, अपने आप को नहीं जाना, प्रभु से भूल रहे हैं, माया में लंपट हो रहे हैं, कहते हमने उनकी यही गति देखी। अमृत को तो कौड़ा कह रहे हैं, और जो मीठी चीज है उसको कौड़ा कह रहे हैं, और जो कौड़ी चीज है भिख्या जहर जहरियत माया का फैलाओ, ये अमृत मान रहे हैं। कहते हम अपनी आंखों से यही देख रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं। साकृत की विद नैनो दी थी, सीधी बात को उल्टी कह रहे हैं, हर एक बात उनकी उल्टी, क्योंकि एंगुलर विजन बदल रहा है, फैलाव में जा रहे हैं, नौ इंद्रियों के घाट पर, नौ गरों के घाट पर फैल रहे हैं। बाहर की जिंदगी सतबाहत रही, अंतर की जिंदगी फजूल मालूम हो रही। कहते ये हालत है दुनिया की, जिसमें दुनिया जा रहा है। अब बताओ यहां समाजों का कहां सवाल है? आप बताए समाजों का तो सिलसिला ही खत्म। रहो किसी समाज में, तुम सोशल बीइंग हो, मगर अरे भाई परमार्थ के लिए तो पहले पिंड को ही छोड़ना पड़ता है। समाजों का तलब जिस्म से है, पिंड से है, और बस संतों का उपदेश वहां से शुरू होता है जहां जिस्मानियत का एंड है। इसे काम लेने के लिए गुजारे मात्र बरतो, इनमें इनसे काम ले लो। मनुष्य जीवन में जो तुम हाइएस्ट आदर्श को पा सकते हो उसको हासिल कर लो, बात तो इतनी।
कूड़ कपट अहंकार रिझाना, नाम सुनत जन बिछुआ दसाना।
अब साकत की ये गति बयान करके कुछ और बयान करते हैं। कहते वो कूड़, कूड़ कहते फनाची। गुरु नानक साहब कूड़ की तारीफ आसाद जी की वार में किया, कूड़ राजा कूड़ पर जा, बड़ी लंबी तारीफ करके फरमाते हैं आसाद जाकर, कूड़ कूड़े विश्रिया करता, किस नार की ये दोस्ती, सब जग चलन पना में दुनिया लग रहे। कहते साकित लोग पना में लग रहे, और फिर उनकी क्या गति है? कपट है, दिल में कुछ और जबान से कुछ और, साफ गोई नहीं। परमार्थ के रस्ते जाने वालों के लिए साफ गोही सारे यकरंगा बात पहला कर्म जो लेना, जिनकी नियत रास है खाली बैठे शव मिले, जो नियत रास करे, नियत रास हो जबान से भी वही कहे, आखिर कार्य यकरंगा बन अंदर और बाहर जबान और दिल एक हो, ये उनकी नहीं। दिल कुछ और कहता हूं, कुछ कुछ
है तेरी याद का लेकर के सहारा, आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा। बैठे हैं तेरी याद का लेकर के सहारा, आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा। दिन रात जला कर से है फुरकत में आए, फुरकत में तुम्हारी दिन रात जला करते हैं, फुरकत में तुम्हारी, फुरकत में तुम्हारी, हर सांस धुआं बनके निकलता है हमारा, हर सांस धुआं बनके निकलता है हमारा, आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा। बैठे हैं तेरी याद का ले करके सहारा आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा चुपचाप सहे जाते हैं हम दर्द की चोटें हम दर्द की चोटें चुपचाप सहे जाते हैं हम दर्द की चोटें हम दर्द की चोटें ले लेके जिए जाते हैं हम नाम तुम्हारा ले लेके जिए जाते हैं हम नाम तुम्हारा आ जाओ चमके मेरी किस्मत का सितारा हाँ बैठे हैं तेरी याद का ले कर के सहारा आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा सपने आया भी गया मैं जल भरे आरो सपने आया भी गया मैं जल भर आरो आए ना सका तुझ इतने प्यारे भेज न सका को आकर मेरी आंखों ने तुझे नींद में ढूंढा तुझे नींद में ढूंढा आकर मेरी आंखों ने तुझे नींद में ढूंढा तुझे नींद में ढूंढा उठ उठ के तुझे दिल ने कई बार पुकारा उठ उठ के तुझे दिल ने कई बार पुकारा आ जाओ आ जाओ आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा हाँ बैठे हैं तेरी याद का ले कर के सहारा
जीव का आदर्श स्वयं को पाना मुबारक है वह हृदय जिसमें उसके पाने की ख्वाहिश प्रबल हो रही दुनिया के लिए तो बड़ी इंतजारे हैं बड़े कई बार सरपटकते भी नजर आए रोते चिल्लाते भी नजर आए कितने के लोग हैं जो प्रभु के पाने के लिए दो आंसू बहाते नजर आए जैसे मैंने अर्ज किया कि आत्मा का मनुष्य जीवन का सहारा परमात्मा आत्मा का आधार परमात्मा जिसको वो नहीं मिला जीवन आधार ही ना रहे उसका जीवन कहाँ है उसके बगैर हम मुर्दा हैं जीता पुरुष कौन है गुरुवाणी में इसकी तारीफ आई तो जीविया जिस मन वस्या सोए नानक अवर न जीवे को। कौन जी रहा है जिसके अंतर वो प्रभु बस गया, उसके सवा सब मुर्दा। अगर एक क्षण मात्र भी वो सत्य जिसके आधार पर हमारी आत्मा इस जिस्म के साथ कायम है हट जाए, जिस्म की परलय हो जाती है। मनोचीन पाकर जिसके हृदय में उसके पाने की जबरदस्त ख्वाहिश बन गई, समझो उसका वो आखिरी जन्म। इंद्रियों के भोगों रसों में तो कई जन्म हमने बिताए, मनुष्य जीवन में यही एक फजीलत थी कि इसमें रहते हुए इंद्रियों के भोगों रसों में भी गुजरते हुए भी आत्मा के अंतर पर भरोसा है उस प्रभु के मिलने की पैदा। कुदरती तौर पर हर एक कतरा समुद्र से मिलना चाहता है, हर एक जुज कुल का आशिक है। ये बाहरी बंधनों से दुनिया में बंध रहा, जैसे एक बत्ती हो जल रही हो, अगर उसको उल्टा भी कर दो तो भी उसके शोला आसमान की तरफ जाता, क्योंकि उसका असर आसमान पर सूर्य। तो आत्मा है परमात्मा की अंश। ये कतरा समुद्र में वासल होना चाहता, जुज कुल से मिलना चाहता, मगर कब ये ख्वाहिश इसके अंतर से उठती है इसके अंतर इनेट जातीयत के लिहाज से कुदरती कश्ती से लिखना तीसरी इसमें है, मगर जिस लोह पर मिट्टी चढ़ जाए फिर मिकनातीस का पहाड़ भी साथ हो वो भी नहीं कहता। तो अगर मिट्टी से वो सोने के लोहे के टुकड़े को साफ कर दो वो खिंच जाता। तो हमारी आत्मा, मैं याद कर रहा था, इसमें इनेट सेंस है प्रभु के पाने की। बाहरी तरफ से अगर ये हट जाए अवश्य जाना चाहती, क्योंकि इसका धाम अर्शों पर है। तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धरसंग रह तो बंधानी। क्या आत्मा तेरी असली वतन वो है जहां पर ये धर नहीं है, समझे? और तू कहां के रहने वाली, कहां मिट्टी और पानी में फंस रही। अगर ये बंधनों से आजाद हो जाए अवश्य प्रभु की तरफ जाते। जैसे बैलून आजकल तो नहीं, पहले बैलून हाइड्रोजन के होते थे, उसमें लोग उडुल खुडुले बांधकर उड़ा करते थे आसमान पर, उसको जमीन से रस्सियों से बांध देते थे। जब उड़ाना मंजूर होता तो रस्सियों को खोल देते थे, वो आसमान पर चले जाते। हमारी आत्मा मन के अधीन इंद्रियों की रस्सियां इसको बाहर दुनिया में बांध रही। अगर ये इस तरफ से हटे बेख्तियार ये जाएगी कहां, अपने प्रभु के पास। तो ये कुदरती इनेट जातियत के लिहाज से हर एक इंसान के अंदर ये जज्बा मौजूद है, क्योंकि ये बाहर बन रही है। वो उस तरफ से जाने से काट सकते, बंधन थोड़ा ढीला कर दो होश आने लगती है। कई बार आप देखते होंगे दुनिया में कई बड़े दुखी होकर ये कहते छोड़ो जाने दो, चलो प्रभु को याद करो, कोई सिखाता नहीं, मगर कुदरती जज्बा मौजूद। पढ़ा अनपढ़ किसी के अंतर भी ये कुदरती इनेट सेंस मौजूद है। तो जिस आत्मा के अंतर प्रभु की ख्वाहिश बन गई, वो इंतजार में है, वो उसको चाहता है, वो बाहर से ढूंढता तलाश करता है, कभी ग्रंथों में, कभी पोथियों में, कभी तीर्थ स्थानों में, कभी जंगलों पहाड़ों पर, कहीं दरियाओं के तटों पर तलाश करता है, मिलता नहीं, मगर वो और सरगर्दान होता। जब इच्छा प्रबल होती है, रूलिंग पैशन बनती है, तो बेख्तियार ऐसा पुरुष दुनिया में रहती हुई होती, वो चाहता है कहीं से मिले, किसी कीमत पर मिले, मगर किन को, जिस चीज के पाने की प्रबल ख्वाहिश हमारे हृदय में हो। दुनिया के लिए आप देख लें, अगर किसी चीज का पाना रूलिंग पैशन हमारे अंतर में बन जाए तो बेख्तियार उसके लिए हम हर कुछ काम करने को तैयार हैं मिले से ही। इसी तरह जिनके अंतर मनोजीवन पाकर आत्मा को हमेशा के सुख पाने की ख्वाहिश प्रबल तौर पर जबरदस्त तौर पर जाग उठे, इसके जागने के दो ही तरीके हैं, या लगातार याद, या किसी ऐसे पुरुष जिसने पाया उसकी सोबत, उनको देखकर भी तो ख्वाहिश पैदा होती है, पहलवान को देखकर पहलवान बनने की इच्छा प्रबल हो जाती है, या तो दिन रात ऐसी की सोबत हो जिसमें वो चीज झलक दे रही है, उसको देख देख कर नशे में आता है इंसान, पाना चाहता है, मिलता नहीं, किसी से मिले। मैं आपको अर्ज करूं 1924-14 का वाक्य है, ख्वाहिश तो कुदरती चली आती थी, बाहर एक महापुरुष मिले, मैंने कहा भाई परमात्मा मिले किसी तरीके से मिला, ख्वाहिश बड़ी प्रबल थी मगर कोई सामान बनता नहीं था, ग्रंथों पोथियों में तलाश किया, लाइब्रेरी में पढ़ी, मुख्तलिफ महात्माओं के ग्रंथ पोथिये भी स्टडीज की, बड़े समझ बागों का जिक्र तो आता है मगर कैसे मिलता है इस बात का जिक्र, यही कहा जाओ महात्मा के पास। जब दुनिया की हालत देखते हैं, बट्टा उठाओ तो गुरु, बट्टा उठाओ तो साधु, बट्टा उठाओ तो संत महात्मा, बड़ा प्रचार कसम गोयत कि दो गए मंत्र शस्त्र, दुनिया भरी नजर आती है, दिल में ये ख्वाहिश प्रबल थी कि हे प्रभु अगर तू मिल जाए मैं तेरे पाने का ख्वाहिशमंद हूं, मैं ये भी जानता हूं कि जो तुझको मिल चुके हैं उनके मिलने से मैं आप तक पहुंच सकता हूं, मगर मुझे डर ये है कहीं ऐसे पुरुष से वास्ता न बन जाए जो तुझ तक न पहुंचा हो मेरा जीवन बर्बाद चला जाए। तो ये परवल ख्वाहिश थी, उसके लिए मालिक से सामान कर, भूखे के लिए रोटी है, प्यासे के लिए पानी, इस ख्वाहिश का प्रबल होना एक दलील है कि प्रभु आने वाला। जब बादल आ जाते हैं तो बारिश की उम्मीद होती है कि नहीं, जिस फलदार दरख्त में शगुफे पड़ जाते हैं फल के पड़ने की उम्मीद पड़ जाती है, जो जिस हृदय में बिना सोध इंतजार जबरदस्त जाग उठे, समझो इसके पीछे धक्का देने वाला कोई आ गया, तुम्हें खींचना चाहता। रामा बस एक फकीर हुई है, वो नमाज पढ़ा करती थी, नमाज पढ़ के कई कई घंटे पढ़ते रहते, किसी ने पूछा राबिया तू ये बता तुझे परमात्मा पहले मिलता है नमाज पढ़ने के या नमाज पढ़ने के बाद आता, तो कहने लगी परमात्मा खुदा पहले आता पीछे में नमाज पढ़ती, मैं तुझे कैसे महसूस होता, कहने मेरे अंदर जब जज्बा जबरदस्त जागता है, राह उठती है, बेख्तियारी पैदा होती है, सोच गुदास बेख्तियार आंसू जारी होते, मैं सिर से धक्का देने वाला आ गया, मैं नमाज पढ़ने लग जाती। तो हृदय में उस कशिश का पैदा होना, समझो उस प्रभु का पेश खेमा है उसके आने का, जिस घट में ये पीड़ा नहीं उपजी अभी प्रभु का पाना दूर है। जित तन बिरहा बिरहा के बिरहा तू सुल्तान, ऐ बिरहा तू बादशाहों की बादशाह है, जिस तन में तू उपजी नहीं अभी वो एक मसान की तरह है, जिस तुम मुर्दा हो तो इसको आत्मा को जीवंत करने के लिए पहले उभार चाहिए, शौक चाहिए, तलब चाहिए, बिरा और शोज और गुदाज चाहिए, ये पेश खेमा है प्रभु के आने का। अब इसके बारे में अभी एक शब्द श्री गुरु रामदास जी साहब का, सुबह गुरु अमरदास जी साहब का था, इस वक्त गुरु रामदास जी का आपके सामने रखा जाएगा, गौर से सुनिए वो क्या कहते।
अंतर प्यास उसी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया।
गुरु रामदास जी साहब फरमाते हैं कि मेरे अंतर प्रभु के पाने की प्यास जबरदस्त बन गए। अब प्यास बने, प्यासे को पानी चाहिए। रोटी के बगैर तो किन्नी मुद्दत जी सकता है, पानी के बगैर थोड़े दिन जी सकता है। तो कहते हैं मेरे अंतर प्यास जाग उठी है, किसकी? प्रभु के पाने। अब प्रभु के पाने की प्यास जब जागे, हर दर्शन को मेरा मन बहो तपते, ज्यो त्रिखावंत बिन्नी। प्यास की मिसाल सबने दी है, जैसे त्रिखावंत जिसको प्यास लगी हो पानी के बगैर तड़फता है, ऐसे ही है प्रभु तेरी पाने के बगैर मेरी आत्मा तड़फ है। जब तक ऐसी तलब न हो जमीन नहीं बनती। दो आदमी तालिब कहो एक महात्मा के पास गए कि हमें परमात्मा से मिला दो। वो बाहर नहाने को गए, एक साथ गया नहाने को। नहाने में जब उसने गोता लगाया ना, उसकी गर्दन को पकड़ लिया उसने, पानी के बीच में मिनट दो मिनट पकड़े रखा, वो तड़फा छोड़ दिया, सांस लेने लगा। तो कह रहे क्यों भाई, क्यों घबराते थे? सांस नहीं आ रहा था। क्या तुम इसलिए घबराते थे ना कि सांस आ जाए? जैसे सांस के पाने के लिए तेरे अंतर बड़ी जबरदस्त तड़प थी, ऐसे ही अगर प्रभु पाने के लिए तेरे अंतर तड़प है तो तब आओ, तब तुमको प्रभु मिलेगा। अरे भाई हमको सच पूछते हो, प्रभु के पाने की अभी ख्वाहिश नहीं। मुबारक है वो हृदय जिनको प्रभु पाने की जबरदस्त तड़प बन गई। हमको दुनिया चाहिए, हम दुनिया की तड़प में, हम दुनिया के पुजारी हैं। दुनिया के पुजारी होने के सबब से हम चाहते हैं किसी सामान किसी हीले वसीले से दुनिया मिल सके, वो काम करने को तैयार। जादू से मिले, टूनों से मिले, हाथ फेरने से मिले, किसी सबब से मिले, कहीं से मिले, वो उसको अख्तियार करने के लिए तैयार। बच्चा बीमार होता कि ये राजी हो जाए, कभी वो जादू के वालों के पास है, कभी टूनों के वालों के पास चला जाता, ये राजी हो। न गुरु है न पीर है न खुदा। गुरु और पीर भी तभी तक है जब तक ये सामान बनते रहे, नहीं तो वो भी कौन है? तुम भी कौन? तो प्रभु के पाने के जो ख्वाहिशमंद है ना, ये कह रहे हैं गुरु रामदास, मेरे अंतर प्रभु के पाने की जबरदस्त ख्वाहिशमंद है, मैं तड़प रहा हूं, मेरे अंतर प्यास जाग उठी, उसके बगैर मैं मेरा हृदय तप रहा। अब नेचुरली कुदरती ख्वाहिश जिसके अंतर बन जाए वो क्या करेगा? अब अपना मुकाबला करिए और उन लोगों का मुकाबला करिए, वो क्या चाहते हैं? जैसे हम दुनिया की ख्वाहिश को परबल रखते हैं, उसके पाने के लिए किसी वसीले से वो चीज मिले हम अख्तियार करने को तैयार हो जाते हैं, दिन रात की परवाह नहीं किसी हालत की भी। इसी तरह जो प्रभु के पाने के ख्वाहिश मंद है उसके लिए वो हर एक तरह की कुर्बानी करने को तैयार हो जाते हैं। आप देखिए कई बार आपको अर्ज किया गया कि मजनू लैला का आशिक था, भक्त था, और इतना जबरदस्त प्यार था कि जहां जहां वो चलती थी, जहां जहां पैर के नक्श पड़ते थे उन पर ही मथे टेक कर जाता। पढ़ा लिखा आलिम फाजिल था, ऐसा नहीं कि नहीं था, मगर प्रबल ख्वाहिश थी। लोगों ने कहा कि खुदा तुझसे मिलना चाहता है भाई, चले फिर अगर मिलना चाहता है तो उसको कहो कि लैला बनकर आए। अगर खुदा भी चाहिए तो लैला की शक्ल में चाहिए। अरे भाई हम भी अगर थोड़े बहुत कहीं पुजारी प्रभु के नजर आते हैं तो इसलिए कि दुनिया की ख्वाहिशात हमारी पूर्ण, बात बच्चे राजी रहे, रोजी खुली रहे, ये मुसीबत चल जाए वो मुसीबत चल जाए, ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, सच्चे मानों में हम दुनिया के पुजारी। अगर मजनू मर जाए उसको लैला मिलेगी, खुदा नहीं मिलेगी। हम भी अगर इसी हालत में जिस्म को छोड़ जाएं तो हमको दुनिया में रहना पड़ेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो गुरु रामदास जी साहब फरमा रहे हैं कि भाई मेरे अंतर उस प्रभु के पाने की प्यास भड़क रही, अंतर प्यास उठी प्रभु के। हम तो दुनिया के प्यासे उठ रही है ना, उनके अंतर प्रभु की, कहते मेरे अंतर प्रबल हो गए। फिर ऐसी हालत में अगर कहीं से कोई ढारस मिलती है, हाँ भाई तुझे मिलेगा, तो उसके वचन दिल में काट करते, कहते इस हालत डिमांड और सप्लाई جہاں آگ جلے گی آکسیجن مدد کو آئے گی, سمجھے, جہاں آگ جلے گی آکسیجن مدد کو آئے گی. وہ کہتے ہیں تھرسٹ ہے, پیاس ہے, وہاں پانی ہے, جہاں بھوک ہے وہاں روٹی ہے. وہ پرماتما پھر سامان کرتا. یاد رکھو دل میں طلب ہونی چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے, پھر اس کا آنا بڑا آسان. وہ اپنے آپ ہی کھینچ کر چلاتا. حضرت جنید تھے, وہ فارس میں رہتے تھے دریائے دجلہ کے کنارے. ایک دن وہ گھوڑی پر سوار جا رہے تھے, رستے میں گھوڑی اس طرف نہیں جانا چاہتی تھی جس طرف وہ جانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا اچھا بھائی خدا کا ملک چلو, جہاں چلتی چلے گی. گھوڑی سرپٹ ہو گئی, جاتے جاتے ایک پہاڑ کی کندر میں جا کر کھڑی ہو گئی.